दशम पाठ में मीमांसकों का पूर्व पक्ष हुआ था, उसमें उन्होंने पूर्व पक्ष ये किया था कि लक्षणा द्वारा या आक्षेप के द्वारा या प्रथमांत पद के द्वारा कर्ता अर्थ कर्म अर्थ का लाभ हो जाएगा। तीन का अर्थ जो है कर्ता कर्म मानने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप कर्ता कर्म अर्थ मानते हैं तिंग का तो उसमें क्या प्रमाण है। अब अत्रोच्यते से जो है वैयाकरण उसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि क्या प्रमाण है। कहते हैं कि लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः, यह पाणिनि का सूत्र है। यह सूत्र ही जो है इति सूत्रम एव मानम, यह जो सूत्र है यही प्रमाण है कि तिंग का अर्थ जो है कर्ता और कर्म अर्थ होता है। क्योंकि यह अच्छा कैसे, तो कहा कि अत्र ही चकारात कर्तरीकृत इति सूत्रोक्तम कर्तरी इति अनुकृष्यते। अत्र ही माने लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या, यह जो पाणिनि सूत्र है इसमें लह कर्मणि च, ये जो च पद है इस चकारात माने चका च पदात च पद के द्वारा कर्तरीकृत सूत्र के से जो है कर्तरी पद का अनुकर्षण होता है, माने कर्तरी पद की अनुवृत्ति होती है। तो क्या अर्थ हो जाएगा, अब ये जो सूत्र है लह कर्मणि ना, इसमें अर्थ हो जाएगा कि लह कर्मणि कर्तरी भावे च अकर्म के भ्या, च के बदले अब क्या आ जाएगा कर्तरी आ जाएगा। तो सूत्र का अर्थ होगा लह कर्मणि कर्तरी च, लह कर्मणि कर्तरी भावे च अकर्म के भ्या। अब आप देखिए इस सूत्र को तो बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा क्या कहता है कि लह, लह माने लकार, लकार समझते हैं ना, लट लिट लोट लंग ये सब लकार होते हैं, दस लकार हैं। तो लह माने लकार जो है किस अर्थ में होता है, तो कर्मणि कर्तरी भावे माने कर्म अर्थ में होता है, कर्ता अर्थ में होता है, भाव अर्थ में होता है। तो ये सूत्र कह रहा है ना कि लकार जो है कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में, भाव अर्थ में होता है। तो इस तरह से सूत्र ही प्रमाण है, सूत्र से बड़ा और कोई प्रमाण हो सकता है क्या। तो आपने जो पूछा कि तिंग का अर्थ जो है कर्ता कर्म है, इसमें क्या प्रमाण है, तो प्रमाण जो है पाणिनि का सूत्र है लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्या। तो कहेगा कि इसमें तो केवल कर्मणि कहा, कर्तरी तो कहा नहीं, तो इसका जवाब उसने यही दिया कि च पद के द्वारा अनुकर्षण होगा, कर्तरीकृत सूत्र से कर्तरी पद का अनुकर्षण होगा, फिर हो जाएगा लह कर्मणि कर्तरी च। इस तरह से सूत्र के प्रमाण के आधार पर लकार का अर्थ जो है कर्ता कर्म माना जाता है, ये कहा व्याकरणों ने। अब यहाँ पर फिर मीमांसक प्रश्न करते हैं कि सूत्र में तो लकार का अर्थ बताया गया कर्ता कर्म, तिंग का अर्थ तो कर्ता कर्म बताया नहीं गया, आप तो तिंग का अर्थ मानते हैं कर्ता कर्म, ये कैसे होगा। तो इसका जवाब देते हैं कि बोधकता रूपाम तिवादि शक्तिम तत्स्थानित्वेन कल्पिते लकारे प्रकल्पया। ताकि ऐसा है कि तिंग पद की जो शक्ति है, शक्ति लक्षणा व्यंजना में आपको समझा चुका हूँ कि शब्द और अर्थ में रहने वाला जो संबंध है, साक्षात संबंध जो है उसको हम शक्ति कहते हैं। तो उसको अगर शास्त्र की भाषा में आपको सिखाना होगा कि टिप में रहने वाली जो शक्ति है उसका स्वरूप क्या है, तो यही बताना है। बोधकता रूपाम तिवादि शक्तिम माने बोधकता रूप है वह शक्ति, तिवादि में रहने वाली जो शक्ति है वह शक्ति कैसी है, तो बोधकता रूपा शक्ति है। ये बोधकता रूपा शक्ति क्या है कि बोधक किसको कहते हैं, जो बोध करावे, जो ज्ञान करावे उसको बोधक कहते हैं, और बोधक में रहने वाला जो धर्म है उसको बोधकता कहते हैं। तो यह जो बोधकत्व जो है, बोधकता जो है, वही है शक्ति का नाम, ठीक है। तो तिवादि में रहने वाली जो बोधकता शक्ति है वह तत्स्थानित्वेन कल्पिते लकारे प्रकल्पया, उस शक्ति की कल्पना जो है ना तिंग के स्थानी में कर लेते हैं। ये क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जब हम भवती की सिद्धि करते हैं तो भू धातु से लट लकार लाते हैं, लट के स्थान पर तिप विभक्ति लाते हैं, तिप आदेश करते हैं। तो यह जिसके स्थान पर आदेश होता है उसे स्थानी कहा जाता है। तो तिप का स्थानी कौन हो गया, लट लकार हुआ। ऐसे ही जितने भी तिप हैं, हैं, नौ प्रकार के तिप हैं, तिप्त जी सिप्त स्थ मिबस मस, और अगर आपने पद वाला ले लें तो त आताम झ था सा थाम धम इज वही महिम, ये जो 18 हैं इन, ये तिवादी जो होते हैं कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो इन 18 में शक्ति रहती है, कौन कैसी शक्ति रहती है, माने कर्ता कर्म अर्थ को बताने वाली शक्ति रहती है। लेकिन क्या होता है, ये तो तिवादी क्या है, आदेश है, और लट लकार आदि जो है ना वह क्या है, स्थानी है। तो आदेश में रहने वाली जो शक्ति है उस शक्ति की कल्पना हम स्थानी में कर लेते हैं, माने लकार में कर लेते हैं। तो तिवादी आदेश में रहने वाली जो बोधकता रूपा शक्ति, उस शक्ति की कल्पना तत्स्थानित्वेन कल्पिते, उसके स्थानी में माने तिवादी प्रत्यय में जो है कल्पिते, कल्पना करते हैं। और उसका स्थानी कौन है, तो लकार है, इसलिए कहा कि कल्पिते लकारे प्रकल्प्य, माने लकार में स्थानी में आदेश वाली शक्ति की कल्पना करते हैं, और फिर लकाराह कर्मन कर्तरिच अनेन विधीयन्ते, और इस सूत्र के द्वारा माने लह कर्मन च भावे चा कर्म के व्यह सूत्र के द्वारा कर्म अर्थ में और कर्ता अर्थ में लकार का विधान होता है। तात्पर्य ये है कि सूत्र में भले कहा गया कि कर्ता अर्थ में कर्म अर्थ में लकार होता है, माने लकार का अर्थ बताया गया, लेकिन वास्तविक में अर्थ जो होता है ना वो आदेश का अर्थ होता है, स्थानी का अर्थ होता नहीं। तो फिर कैसे बताया इन्होंने, तो इसलिए बताया कल्पना कर लिया गया, क्योंकि तो आदेश में रहने वाली जो शक्ति है उस शक्ति की कल्पना स्थानी में की जाती है, और उसी के आधार पर जो है यहाँ पर हम तिंग का अर्थ जो है या तिप का अर्थ, तिवादी का अर्थ जो है कर्ता कर्म अर्थ मांगते हैं। आगे वही बताते हैं कि नकार विसर्गादि निष्ठाम कर्म करनादि बोधकता शक्ति आदाय ससादि विधानवत। यहाँ एक बात आप समझ लीजिए कि जिस पद को आप सुनते हैं, जो सुनाई पड़ता है ना, उसी में वास्तविक शक्ति होती है, और जो सुनाई नहीं देता उसमें वास्तविक शक्ति नहीं होती है, उसमें काल्पनिक शक्ति होती है। तो आप जब भवति भवता भवंती शब्द को सुनते हैं ना, लट लकार को तो नहीं सुनते हैं, पद में लट लकार का कहीं प्रयोग नहीं होता, लिट लकार का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उसके बदले तिवादी प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो जो सुनाई देता है उसमें वास्तविक शक्ति होती है, सुनाई कौन देता है, आदेश सुनाई देता है, और जो कौन सुनाई नहीं देता है, स्थानी सुनाई नहीं पड़ता है। तो स्थानी में जो शक्ति रहेगी वो काल्पनिक शक्ति रहेगी, और आदेश में जो शक्ति रहेगी वो वास्तविक शक्ति रहेगी। तो आदेश में रहने वाली जो वास्तविक शक्ति है उसकी कल्पना स्थानी में रहने स्थानी वाले पद में हम कर लेते हैं, और उसके आधार पर लह कर्मणि सूत्र के द्वारा लकार का जो है कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में विधान होता है, जबकि वस्तुतः कर्ता कर्म अर्थ जो है किसका है, तिवादी का है। इसमें इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, कहा कि जैसे राम रामो रामा रामम रामो रामान, तो द्वितीया के बहुवचन में रामान का प्रयोग होता है, तृतीया के बहुवचन में रामेन रामाभ्याम रामैः रामैः का प्रयोग होता है। तो रामान में आपने नौ को सुना लास्ट में, रामान नौ, और ऐसे रामैः विसर्ग को सुना आपने, तो जो जिसको सुनते हैं उसी में वास्तविक शक्ति होती है। तो वास्तविक शक्ति किसमें हुई, रामान के नौ में, रामैः के विसर्ग में, और काल्पनिक शक्ति किसमें होगी, इसका जो स्थानी है, तो रामान में स्थानी कौन होता है, सस विभक्ति होती है, और उसके स्थान पर तस्मा छसु न पुनसी से नकार आदेश होता है, ठीक है। तो नकार जो आदेश है जो सुनाई देता है उसमें वास्तविक शक्ति है, लेकिन उसकी कल्पना हम सस विभक्ति में कर लेते हैं, सस प्रत्यय में कर लेते हैं, और सस प्रत्यय का आदेश करते हैं, कर्मन द्वितीया से सस विभक्ति करते हैं। ऐसे ही रामैः में विसर्ग आदेश है, उसमें वास्तविक शक्ति है, हम उसी को सुनते हैं, और उसमें रहने वाली जो शक्ति है विसर्ग में उसकी कल्पना हम ताभ्याम भिस विभक्ति में कर लेते हैं, और कृतिकरण योग तृतीया से तृतीया का विधान करते हैं। तो जैसे सस विभक्ति की, भिस विभक्ति की, हम क्या करते हैं, शक्ति की कल्पना करके काल्पनिक शक्ति के आधार पर विधान करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जो है लकार का विधान काल्पनिक शक्ति के आधार पर किया गया है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो आदेश में होती है क्योंकि वही सुनाई पड़ता है। तो इस तरह से नकार विसर्ग आदि निष्ठाम, माने नकार में विसर्ग में आदि में निष्ठ माने रहने वाली जो कर्म करण आदि बोधकता शक्ति है, नकार में रहने वाली शक्ति है कर्म बोधकता शक्ति, रामेह विसर्ग में रहने वाली शक्ति है करण बोधकता शक्ति। तो उस शक्ति में आदाय मान उसी शक्ति को लेकर के, उसी शक्ति की कल्पना करके ससादि विधानवत, जैसे सस विभक्ति का भिस विभक्ति का विधान किया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी तिंग में रहने वाली जो शक्ति है उसके आधार पर लकार का विधान किया गया है। इस तरह से इन्होंने प्रमाण भी दिया, और प्रमाण में जो शंका इन्होंने की थी कि आपके सूत्र में तो लकार का अर्थ बताया गया है, तिंग का अर्थ बताया नहीं गया है, तो उसका भी इन्होंने जवाब दिया कि वास्तविक शक्ति तो तिंग में ही है, काल्पनिक शक्ति जो है लकार में होती है, और काल्पनिक शक्ति के आधार पर इस सूत्र में विधान किया गया। इस तरह से जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था उसका उत्तर व्याकरणों ने दिया। अब दूसरा प्रश्न फिर पूर्व पक्षी करते हैं, माने मीमांसा करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि लह कर्मणि च भावे चाकर्म के, यह जो सूत्र है इसमें जो कर्तृपद और कर्म पद है वह वास्तव में कर्तृपद कर्ता अर्थ को नहीं बताता, कर्म पद कर्म अर्थ को नहीं बताता, अपितु क्या बताता है, तो कर्तृत्व कर्मत्व परे न च सूत्रे कर्तिकर्म पदे कर्तृत्व कर्मत्व परे, ताकि कर्तृपद यहाँ पर कर्तृत्व अर्थ को बताता है और कर्म पद यहाँ पर कर्मत्व अर्थ को बताता है। अब आप बहुत दिनों से त्व प्रत्यय की बात सुन रहे हैं, तो कर्तृत्व मतलब कर्ता वाला, कर्ता में रहने वाला धर्म, कर्मत्व माने कर्म में रहने वाला धर्म, तो कर्ता का अर्थ यहाँ पर कर्तृत्व है अर्थात कर्ता में रहने वाला धर्म है, कर्म का अर्थ कर्मत्व है अर्थात कर्म में रहने वाला धर्म है, न कि कर्ता अर्थ है और कर्म अर्थ है। तो कहा कि ये कर्तृत्व कर्मत्व क्या होता है, तो आगे बताते हैं, तथा च कर्तृत्वम कृति ही, माने कर्तृत्व का अर्थ हो गया कृति, क्योंकि कर्ता में रहने वाला जो धर्म है वह कौन सा धर्म होगा, कृति होगा, कृति का मतलब होता है प्रयत्न, तो प्रयत्न करने वाला कौन होता है, कर्ता ही प्रयत्न करता है क्रिया के लिए ना, तो कर्तृत्व का मतलब हो गया कृति, और कर्मत्व का क्या अर्थ होगा, तो कर्म में रहने वाला धर्म, तो कर्म में कौन सा धर्म रहता है, तो फलम, फल जो है वह कर्म में रहता है, इसलिए कर्मत्व का अर्थ हो गया फल। तो यदि लह कर्मन च भावे चाकर्म के भ्या, जिस सूत्र को आपने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया उस सूत्र में कर्तृ का अर्थ है कर्तृत्व तो अर्थात कृति, और कर्म का अर्थ है कर्मत्व अर्थात फल, तो कृति क्या है, व्यापार रूप है। तो इस तरह से यहाँ पर सूत्र के द्वारा जो है यही निकलेगा कि लकार का अर्थ कृति है, कृति है अर्थात व्यापार है, और लकार का अर्थ क्या है, फल है। ये नहीं निकलेगा कि लकार का अर्थ कर्ता और कर्म अर्थ है, तो और जो लकार का अर्थ रहेगा वही तिंग का अर्थ माना जाएगा, तो तिंग का अर्थ भी जो है व्यापार और फल ही होना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि इति नौ संख्यम, ये जो नौ च है ना इसको संख्यम में लगा दीजिए कि इति नौ संख्यम, माने इस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। ये जो अभी इन्होंने मीमांसकों ने व्याख्या की ना कि कर्ता का अर्थ कर्तृत्व है माने कृति है व्यापार है, और कर्म का अर्थ कर्मत्व है अर्थात फल है, इति नौ संख्यम, इस तरह की शंका ठीक नहीं है। क्यों, तो फल व्यापार यो धातु लभ्यत्व है ना, ताकि फल और व्यापार जो है वह तो धातु से लभ्य है, माने धातु का अर्थ है वह धातु से ही उस अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर लकार का पुनः वहाँ पर शक्ति की कल्पना करना तो बेकार है व्यर्थ है। इसलिए ये जो व्याख्या आपकी है कर्तृत्व कर्मत्व वाली व्याख्या वह सही नहीं है। ये सही कब होता, जब यह अर्थ अनन्य लभ्य होता, माने किसी अन्य से लभ्य नहीं हो पाता, किसी दूसरे से प्राप्त नहीं हो पाता, यह तो दूसरे से ही अर्थ मिल रहा है, धातु के द्वारा मिल रहा है, इसीलिए जो अब दूसरे से मिल रहा है तो इस अर्थ को मिलवाने के लिए प्राप्त करने के लिए फिर लकार में शक्ति मानना ठीक नहीं है। अब इसके आगे फिर बात आती है कि अथ दर्शनांतरीय रीत्या व्यापारस्य धात्वर्थत्वाभावात् तत्र लकार विधि स्यात् इति चेत्, कहा कि दर्शनांतरीय रीतिया, रीति, रीति माने प्रकार, तरीका, ढंग, शैली कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और दर्शनांतरीय माने अन्य दर्शन की रीति से, जैसे मीमांसा क्या है, व्याकरण से भिन्न दर्शन है, अन्य दर्शन हो गया, तो दर्शनांतरीय रीतिया माने मीमांसा दर्शन के आधार पर उनके दर्शन में क्या है कि व्यापार को धातु का अर्थ माना जाता है, फल व्यापार से धातुअर्थत्व अभाव, मीमांसक के मत में व्यापार जो है वह धातुअर्थ नहीं होता, धातुअर्थ का अभाव होता है व्यापार में, तो वह किसका होता है, तिंग का अर्थ होता है। तो कहा कि आपने जो अभी कहा कि फल और व्यापार धातु लब्ध है, इसीलिए लकार की शक्ति फल व्यापार में नहीं मानी जाएगी, ये तो आपके मत से तो ठीक है, व्याकरण के मत से, लेकिन मीमांसा के मत से ये सही नहीं है ना। मीमांसा के मत में तो हम फल व्यापार को फल व्यापार को धातु का अर्थ मानते ही नहीं है, वहां तो हम व्यापार को धातु का अर्थ मानते हैं, तो या धातु लभ्य नहीं हुआ, तिंग का अर्थ मानते हैं व्यापार, हाँ, तो धातु से यह जो है ना फल व्यापार अर्थ नहीं मिलेगा, अनन्य लभ्य हो गया वह, इसलिए वहां पर हम शक्ति की कल्पना कर सकते हैं फल और व्यापार अर्थ में। इति चेत, ताकि यदि ऐसा आप कहेंगे तभी कृताम अपि कर्ति कर्मादि वाचित्वम न सिद्धे, ताकि इस तरह से अगर आप लकार की शक्ति मान लेंगे फल व्यापार में, माने लकार का अर्थ मान लेंगे फल व्यापार, तो आपको जैसे तिंगंत में आपने ये चीज मानी, ऐसे कृदंत में भी आपको यही माननी पड़ जाएगी, क्योंकि लकार का जो अर्थ होता है वही जो है कृत प्रत्यय का भी अर्थ होता है। तो जब आप तिंगंत, दो तरह के पद होते हैं प्रसिद्ध है, तिंगंत पद और कृदंत पद, मैंने एक दिन बताया था कि धातु से बनने वाले जो पद होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, तिंगंत पद और कृदंत पद। तो व्याकरणों का ये कहना है कि अगर आप तिंगंत पद में ये जो है कर्ता कर्म अर्थ, ये फल और व्यापार अर्थ मानेंगे, तो कृदंत पद में भी आपको जो है कर्ता कर्म अर्थ बात जो कर्ता कर्म अर्थ जो है आपको मानना। अच्छा, वो ऐसा है कि स्थिति पहले समझ लीजिए कि कृदंत में क्या है कि कर्ता कर्म अर्थ कृत प्रत्यय का मीमांसक भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, तिंगंत में केवल मतभेद है। लेकिन अगर तिंगंत में आप फल और व्यापार अर्थ करेंगे, अरे तिंग का अर्थ फल व्यापार अर्थ मानेंगे तिंगंत पद में, तो कृदंत पद में भी आपको जो है फल व्यापार ही अर्थ मानना पड़ेगा, आप जो कर्ता कर्म अर्थ मानते हैं ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि तुल्य योगक्षेमम, तिंगंत पद और कृदंत पद दोनों में धातु ही रहती है ना, तो जो एक जगह मानेंगे वो भी यही दूसरी जगह माननी पड़ेगी। आप क्या करते हैं कि तिंगंत में आप जो है कुछ और मानते हैं, फल व्यापार अर्थ मानते हैं तिंग का, और कृदंत में प्रत्यय का अर्थ मानते हैं, तो ये बात नहीं चलेगी, इसलिए आपको दोनों ही जगह, जैसे कृदंत में जो है कर्ता कर्म अर्थ मानते हैं, वैसे ही तिंगंत में भी आपको कर्ता कर्म अर्थ मानना चाहिए। आज का पाठ यहीं रखते हैं, फिर आगे देखते हैं।